उधर मनाल आदित्य का इंतजार कर रही थी। वो तैयार हो चुकी थी, उसे आदित्य का इंतजार था। वे दोनों आज रात के लिए बाहर जाने वाले थे। आज सुबह वे दोनों बहुत ही खुश थे। जैसा हम जिंदगी में सोचते हैं, जिंदगी वैसी नहीं चलती। माना और आदित्य तो आज की रात को यादगार रात बनाना चाहते थे। आज उन दोनों के बीच के फासले खत्म होने वाले थे, मगर किस्मत को और ही मंजूर था। मनोहर लाल की चाल कामयाब रही थी। प्रिया मल्होत्रा ने आदित्य पर जो रेप का आरोप लगाया था, उसकी वजह से पुलिस आदित्य को ढूंढ रही थी। पूरे मीडिया में आदित्य के खिलाफ खबर चल रही थी। प्रिया मल्होत्रा को बार बार दिखाया जा रहा था, चाहे उसने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। मनोहर लाल ने सोचा था, जब माना को पता चलेगा कि आदित्य ने किसी का रेप किया है, वो आदित्य से नफरत करेगी। आदित्य की कितनी बदनामी हो जाएगी। जब आदित्य किसी रेप केस में इन्वॉल्व होगा तो माना उसको छोड़ देगी। उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। आदित्य को तो खुद की लड़ाई से टाइम नहीं मिलेगा कि वो माना के लिए कुछ कर सके। और फिर रिश्ते में एक बार दूरियां हो जाएं, फिर रिश्ते में वो बात नहीं रहती। इसलिए उसने आदित्य के खिलाफ अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चली थी। वो उन दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहता था। जैसा मनोहर लाल ने सोचा था, उसके बिल्कुल उल्टा हुआ था। माना और आदित्य एक दूसरे के और नज़दीक आ गए थे। आदित्य और माना की शादी को इतना टाइम हो गया था। वे दोनों कई महीने से एक दूसरे के साथ थे। माना के दिल में आदित्य के लिए जो फीलिंग थी, वो बढ़ने लगी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। माना आदित्य पर इतना यकीन करती थी कि आदित्य कभी किसी का रेप नहीं कर सकता। आदित्य ने मनाल की मर्जी के बिना आज तक माना को टच नहीं किया था, जबकि वो उसकी कानूनी पत्नी थी। और शादी भी उसने माना के साथ यही कहकर की थी कि वो उसके साथ सोना चाहता है, मगर अपने कहे के उलट माना को बहुत इज्जत और प्यार दिया था। मेहर ने माना और आदित्य को एक सेफ जगह पर भेज दिया था, जहां पर वे दोनों सेफ थे। इस समय माना और आदित्य एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे थे। आदित्य के सारे मामले हैंडल करने के लिए मेहर था। मेहर को अपनी बहन और बहन के पति पर पूरा यकीन था। मेहर ने अपनी फैक्ट्री और ऑफिस ज्वाइन किए थे, बिना किसी को ये बताए कि वो मेहर खन्ना है। उसने एक साधारण कर्मचारी के तौर पर ऑफिस और फैक्ट्री ज्वाइन की थी। किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने फैक्ट्री की कैंटीन में किसी को बातें करते हुए सुन लिया था। उन्हीं बातों के आधार पर उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। मेहर ने सबसे पहले ये पता किया कि वो कौन था जो उसकी फैक्ट्री खरीदना चाहता था और उसकी बहन के साथ शादी करना चाहता था, जिसका प्लान आदित्य की वजह से फ्लॉप हो गया था। उसे सबसे पहले मनोहर लाल के बारे में पता चला। उसने प्रिया मल्होत्रा की भी इन्वेस्टिगेशन की। प्रिया मल्होत्रा के घर की जब उसने तलाशी ली, तो प्रिया मल्होत्रा के घर से उसे मनोहर लाल और प्रिया मल्होत्रा की दोनों की एक साथ फोटो मिल गई थी। तब मेहर को पता चला कि प्रिया मल्होत्रा मनोहर लाल की गर्लफ्रेंड है। वो समझ गया कि प्रिया मल्होत्रा उसी के इशारे पर काम कर रही है। मनोहर लाल के कहने पर ही प्रिया मल्होत्रा ने आदित्य को फंसाया था। इस इन्वेस्टिगेशन के बीच उसे एक बात और भी पता चली कि कोई तीसरा भी है जो आदित्य को फंसाना चाहता है। ये तीसरा कौन है, मेहर उसके बारे में पता लगाना चाहता था। मेहर को लगा तीसरा कोई आदित्य का नज़दीकी हो सकता है। मेहर ने आदित्य के परिवार पर नज़र डाली। आदित्य के जेल जाने से सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा हो सकता था? सीधी सी बात, अगर आदित्य जेल जाता है तो उसके बाद पूरा बिजनेस अधिराज राजवंश के हाथों में चला जाएगा। आदित्य के जेल जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अधिराज राजवंश को ही होना था, तो मेहर का सीधा सीधा शक अधिराज राजवंश पर गया। फिर वो दोनों सगे भाई भी नहीं थे, इसलिए मेहर का शक और भी बढ़ गया। उसने अधिराज राजवंश की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अधिराज के पीछे उसने अपने आदमी लगा दिए। इन्वेस्टिगेशन से मेहर को पता चला कि अधिराज एक सीधा साधा इंसान है जो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। आदित्य और अधिराज दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। अनीता जी और धर्मपाल जी ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। आदित्य जरूर शुरू में एक बिगड़ा हुआ लड़का था, मगर अधिराज शुरू से ही एक अच्छा बेटा बनकर रहा था। वो एक सीधा साधा इंसान था। मेहर को अधिराज पर यकीन हो गया और उसने अधिराज के साथ ये बात शेयर की। मेहर अधिराज के ऑफिस में ही अधिराज से मिलने चला गया। आओ मेहर बैठो, अधिराज ने उससे कहा। चेयर पर बैठते हुए मेहर बोला, लगता है आपका काम बहुत बढ़ गया है। आदित्य भाई जहाँ पर नहीं है तो आपको सब अकेले करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरे लिए अकेले ये सब संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने डैड से कहा है कि अब वो ऑफिस को थोड़ा ज्यादा टाइम दे जब तक भाई नहीं आ जाते। वैसे अधिराज भाई, आपको क्या लगता है, आदित्य के इस तरह से फंसाने से किसको फायदा हो सकता है? कौन हो सकता है इसके पीछे? किस पर शक है आपको? मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा कि भाई को ऐसे कौन फंसा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात सच हो, आदित्य जीजू ने सचमुच ऐसा किया हो? मेहर ने जानबूझकर अधिराज से कहा। नहीं नहीं, भाई ऐसे नहीं है। भाई का ऐसा कैरेक्टर नहीं है। उनका कभी भी किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं सुना मैंने, और ना ही वो कोई लड़कियों में ऐसी दिलचस्पी रखते हैं। वैसे भी अब तो माना भाभी आ गई है, उसके बाद तो मतलब ही नहीं। भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं, मुझे उनकी आंखों में दिखता है। दीवाने हैं वो माना भाभी के। फिर प्रिया मल्होत्रा में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो भाई उसके पीछे हो सकते हैं। वो एक साधारण सी मॉडल है। अगर भाई उसमें दिलचस्पी रखते वो तो ऐसे ही मान जाती, और फिर अगर भाई उसमें दिलचस्पी रखते तो उसे मॉडलिंग के टॉप पर पहुंचा सकते थे, इसलिए वो भाई को मना नहीं करती। मैं यकीन से कह सकता हूँ भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई है जो उन्हें फंसा रहा है, अधिराज कहने लगा। मगर कोई ऐसा तो है जो आदित्य को फंसाना चाहता है, कोई चाहता है आदित्य भाई और मानादी अलग हो जाएं, कोई है जो उन दोनों को अलग करना चाहता है, उन दोनों का तलाक कराना चाहता है। मेहर की बात सुनकर अधिराज चुप हो गया। उन दोनों का तलाक? सही बात है, अगर माना भाभी भाई पर यकीन नहीं करती तो वो उनसे तलाक मांगेगी, और उनके तलाक से आदित्य भाई की नानी की प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी, अधिराज बोला। ये बात आदित्य के लिए बिल्कुल नई थी, उसे पहली बार इस बारे में पता चला था। मतलब नानी माँ की कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? मेहर ने पूछा। वो क्या है कि बड़ी मॉम, आदित्य की मॉम, जिनसे पापा ने पहले शादी की थी, अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। आदित्य की नानी ने ये वसीयत की थी कि उनकी प्रॉपर्टी आदित्य को तब मिलेगी जब आदित्य शादी कर लेगा, और शादी के बाद ये प्रॉपर्टी आदित्य और उसकी पत्नी दोनों की होगी। ये प्रॉपर्टी आदित्य भाई और उसकी पत्नी बेच नहीं सकते। जब उनके बच्चे आगे 18 साल के हो जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी उन्हें दे सकते हैं। अगर उससे पहले आदित्य भाई और उनकी पत्नी का तलाक हो जाता है तो ये पूरी प्रॉपर्टी बनारस के किसी आश्रम को चली जाएगी। मतलब फिर से प्रॉपर्टी आदित्य जीजू को नहीं मिलेगी? मेहर ने पूछा। हाँ सही बात है, अगर आदित्य भाई का तलाक हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी भाई को नहीं मिलेगी, अधिराज ने मेहर को बताया। इस प्रॉपर्टी की काफी कीमत होगी। बिल्कुल, करोड़ों की है। वैसे हमारे लिए इस प्रॉपर्टी की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, इसलिए आदित्य भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर किसी दूसरे की नजर से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अधिराज कह रहा था। बनारस के आश्रम से क्या मतलब है? किस आश्रम को जाएगी ये प्रॉपर्टी?
वो क्या है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता। आदित्य के नाना जी दो भाई थे, एक तो आदित्य के नाना जी थे, दूसरे भाई ने शादी नहीं की थी। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे, वो किसी आश्रम में रहते थे। धीरे धीरे वो उस आश्रम के मुखी बन गए, बहुत सेवा की उन्होंने लोगों की। अब उनके नाना के भाई तो रहे नहीं, मगर वो आश्रम है, शायद इसी आश्रम को जाएगी ये प्रॉपर्टी, मेहर सोचने लगा। तो फिर पता करो, अगर ये प्रॉपर्टी उस आश्रम को जाती है तो किसे फ़ायदा होगा, मेहर ने अधिराज से कहा। और ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि ये बात बाहर आती है तो आदित्य भाई को बहुत बड़ा जान का खतरा बढ़ जाएगा, और हो सकता है आपको और मेरी भी जान को खतरा हो सकता है, अधिराज को मेहर समझा रहा था। मुझे उस आश्रम का नाम, पता, एड्रेस सभी बता दीजिए। आदित्य भाई के ऊपर ये रेप का इल्ज़ाम जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, मेहर ने कहा। मेहर को ये आश्रम वाली बात आज पता लगी थी, वो तो मनोहर लाल के बारे में ही सोच रहा था। अब इस केस में एक नया एंगल सामने आया था, तो मेहर का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ चलने लगा था। मामला जितना पेचीदा हो रहा था उतना ही मेहर को समझ आने लगा था। अगर कोई माना को पाने के पीछे था तो किसी को आदित्य जीजू की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, ये तो वो समझ गया था। हो सकता है ये दोनों आपस में मिले हों, मेहर सोचने लगा। अब उसे बहुत बड़ी बात पता चली थी। उसने अपने आदमियों को आश्रम की जानकारी निकालने के लिए कहा था। अब ये भी जानना था कि आखिर आश्रम में ऐसा कौन है, जब प्रॉपर्टी आश्रम को जाएगी तो किसे फ़ायदा होने वाला था। मेहर अपने दिमाग में सारी कड़ियां जोड़ रहा था, तभी उसके फ़ोन पर निशा का मैसेज आ गया। उसने निशा को फ़ोन करने से मना किया हुआ था, इसलिए वो सिर्फ मैसेज करती थी, मुझे तुमसे मिलना है, उस दिन की तरह नहीं, थोड़ा मेरे लिए टाइम निकाल कर आ जाओ, आर। निशा का मैसेज देखकर मेहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सचमुच पूरी टेंशन में एक निशा ही ऐसी थी जिससे बात करके, जिसके बारे में सोचकर मेहर हल्का फील करता था। वो चाहे थोड़ी नखरेबाज थी पर मेहर को पता था कि वो उसे कितना प्यार करती है।